बहुत बढ़िया लेख है, छोटा ही है, बहुत अच्छा है। कले से बचे भक्ति करें। भगवान ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया, राम जी ने, उनका व्यवहार कितना विनयशील है। यह विनय हम लोगों को सीखनी चाहिए। भगवान बोलते हैं कि कोई अनीति की बात कह डालूं तो आप भय छोड़ करके मुझे मना कर देना, मैं नहीं मानूंगा। अब भगवान कभी अनीति की बात बोलने वाले हैं क्या? भगवान तो नीति की बात बोलते हैं, पर भगवान व्यवहार सिखाते हैं कि भाई मैं कोई अनीति की बात कह डालूं तो आप भय छोड़ करके मुझे मना कर देना कि ऐसी बात मत बोलो। कितनी विनयशीलता, कितनी सरलता। इस प्रकार कह रहे हैं कि जो ऐसा मुझे बोलेगा वो मेरा सच्चा मित्र है, वो मेरा सच्चा सेवक है, वो मेरा प्यारा है, जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। ये भगवान का भाव है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी जो प्रार्थना मानता है मैं उसका सेवक हूँ। मैं सब प्रकार से अयोग्य हूँ, न तो मेरा बोलने का अधिकार है, न मेरे में योग्यता है, फिर भी आप लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। माता पिता बालकों की तोतली बोली सुनकर प्रसन्न हुआ करते हैं। व्याख्यान, उपदेश, आदेश ये तो वे ही पुरुष दे सकते हैं जो स्वयं काम में लाते हों। हित की बात होती है वो हृदय में गड़ जाती है। जिसकी वाणी में ओज होता है, जोश होता है, वाणी में विनयशीलता होती है, हृदय में दूसरों का हित भाव होता है, उसके वचन का असर पड़ता है। जो स्वयं सत्य बोलता है वह दूसरों को सत्य बोलने की बात कहेगा तो दूसरा व्यक्ति भी सत्य बोलने की हिम्मत करेगा कि ये बोलता है ना। इसलिए तो जो स्वयं आचरण करते हैं वो उपदेश देने के अधिकारी हैं। मैं कहूंगा कि सत्य बोलना चाहिए, तब आप मेरा व्यवहार देखोगे कि ये बोलता तो है सत्य बोलने के लिए, खुद बोलता है कि नहीं। मैं यदि सत्य बोलता हूंगा तो आप पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। आजकल का समय जाने कैसा है, चाहे जो आदमी चाहे जैसे ही बातें कहने लग जाते हैं, इसलिए लोगों पर अच्छी बातों का असर नहीं पड़ता है। पुराने जमाने में उपदेश त्यागी महात्मा विरक्त लोग ही दिया करते थे, उनका वचन सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे। ऐसे महापुरुषों का थोड़ा भी वचन निकलता वो हृदय में बहुत काम करता था। ऐसे पुरुष तो कोई लाखों करोड़ों में ही होते हैं। अब कहां से लाए, कोई पुरुष मिलते नहीं, कहां से लाए। बाकी पुरुष तो हाय धन में लगे हुए हैं, सत्संग करते हैं परंतु हाय धन में लगे हैं। आपके देखते देखते कितने लखपति राजा महाराजा मर गए, आपके देखते देखते कितने राजा महाराजा मर गए, आज उनका नाम निशान तक नहीं है। यही दशा आपकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। विचार करो, रुपए का लोभी जिस प्रकार से, बहुत ध्यान से, रुपए का लोभी जिस प्रकार से रुपए की उपासना करता है, इस प्रकार भगवान का लोभी भगवान की उपासना करे तो भगवान मिल जाए। रुपया मिले जरूरी नहीं है, उपासना करते फिरो। रुपया मिलना भाग्य के अधीन है और भगवान का मिलना भाग्य के अधीन थोड़ा ही है। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, तो जितना प्रेम रुपयों में किया वो रुपया तो मिला नहीं और भगवान से दूर हो गए। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आग दिया सड़ाई घिसने से प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार नाम जब प्रेम से जपते हैं वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान में प्रेम करना चाहिए। प्रेम होता है भजन से, ध्यान से और सत्संग से। यदि को हमसे ध्यान नहीं होता तो फिर जप करो। कोई कहे कि जप में मन नहीं लगता तो सत्संग करो। अब सत्संग भी जो नहीं करेगा, सत्संग भी जिसको अच्छी नहीं लगेगी, वो कुछ नहीं कर सकता। सुमिरी नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। किसी वस्तु का नाम याद आ जाने पर बिना रूप को देखे ही हृदय में प्रेम पैदा होता है। जैसे हमारे सामने एक पीतल की एक धातु है, हमने उसको पीतल समझ के ही छोड़ दिया, पीतल पड़ा है। एक जोहरी बोलता है, सुनार बोलता है, अरे भाई साहब, जिसको आपने यूं ही पीतल समझ के फेंका है ये सोना है, है? तो आप लपक करके उसी चीज को पकड़ेंगे। सोना है, हाँ ये सोना है। तो सोना नाम सुनते ही आप उस फेंकी हुई वस्तु में कितना आकृष्ट होते हो। ऐसे ही भगवान के नाम को हम लोगों ने ये समझ लिया, मन नहीं लगता, नाम तो लेते ही है। अरे भगवान का नाम है, भगवान का नाम, भगवान से जुड़ते हो। ऐसे ही संत कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए। पर दुख की बात है, इधर कोई ध्यान नहीं देता। ये देखो, इस संसार में कितने ही लोग आपके सामने से निकल गए, चले गए, मर गए। तो अपने यहां संसार में कितना दिन रहना है, कोई रहने वाला तो है नहीं। फिर भी आपके मन में जागृति नहीं होती है, ये जागृति कब करेंगे। मानव शरीर के बात तो होने से रही, और इस मानव शरीर में ही आप जागृति नहीं करते तो कहां करेंगे, कब करेंगे। श्रुति कहती है उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर तत्व को जानो, किंतु हम तो सब मोह की निद्रा में पड़े हुए हैं, हमारी आंखें खुलती नहीं है। कई आदमी तीर्थों में जाते हैं, उनके लिए थोड़ी बात बताते हैं। तीर्थों में जाओ, सबसे प्रेम हटा करके चलना चाहिए, भगवान में प्रेम करना चाहिए। पैदल चलते हो तो भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करो, ये सबसे बढ़कर बात है। एक यदि आप चलो तो दृष्टि को सामने रख करके चलना चाहिए, इधर उधर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। चलते समय कोई जीव हिंसा नहीं हो जाए, इसकी सावधानी रखना चाहिए। स्वार्थ को छोड़कर दूसरों को आराम देने की वृत्ति होनी चाहिए, ये वशीकरण मंत्र है। किसी को वश में करना हो तो उसकी सेवा करो और उसकी महिमा गाओ। इन दो बातों से क्रूर व्यक्ति भी वश में हो जाता है। चाहे महात्मा को भी वश में करना हो तो भी उसकी सेवा करो, देवताओं को वश में करना हो तो भी यही उपाय करो। अरे घर वालों को तो वश में कर लो, यदि घर वालों को वश में करना है तो स्वार्थ छोड़कर दूसरों को सुख पहुंचाओ। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां द्रौपदी से मिली, बड़ा स्नेह था उनमें, तो भगवान की पत्नियों ने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी जी आपके 5 पति हैं, इन 5 पतियों को आप कौन से मंत्र से वश में रखती हो, वो वशीकरण मंत्र मुझे भी हमको भी बता दो। तो द्रौपदी ने तड़क के जवाब दिया कि यदि कोई स्त्री अपने पति को मंत्र आदि से वश में करना चाहती है तो वो स्त्री अच्छी बात नहीं करती है। यदि उसको अपने पति को वश में ही करना है तो स्वार्थ छोड़ करके सुख पहुंचाओ, अपना स्वार्थ छोड़ो और पति को सुख पहुंचाओ, ये सबसे अच्छा मंत्र है। और यदि सुख नहीं भी पहुंचा सके तो कम से कम दुख मत पहुंचाओ। याद रखो, दूसरों को सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं है, दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। खूब ध्यान में रखो, सत्य वचन बोले, झूठ कपट करके हम किसी के साथ धोखे का व्यवहार करते हैं तो ये धोखा हमारे साथ चलेगा और हमको ही धोखा देगा। जिन धन आदि के लिए धोखा किया है वो तो दूसरे लोगों के हाथ में जाएगा और धोखा हमारे पल्ले पड़ेगा। नरक तक ये हमारा पिंड छोड़ने वाला नहीं है। अरे आप सामने ही देखो ना, मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है और दुनिया चाट जाती है। शहद मधुमक्खियों का इकट्ठा किया हुआ वो पैर पीटती रह जाती है और खाते दूसरे लोग ही है। इसी प्रकार आप झूठ कपट करके धन इकट्ठा करते हो तो आप में और मधुमक्खी में क्या अंतर हुआ? उसको तो लोग भोग लेंगे धन को। आपका समय गया सो गया, अब भी चेत लो, भगवान के भजन में अब भी अपना बचा हुआ समय लगा लो, निहाल हो जाओगे। पाया परम पद हाथ से जात गई सो गई, अब राख रही को। तीर्थ तीन बात के लिए है, इसलिए इसको तीर्थ बोलते हैं। तीर्थों में धर्म, काम और मोक्ष तीन चीज मिलता है। अर्थ तो खर्च हो जाता है, उस अर्थ को खर्च करने पर धर्म, काम और मोक्ष तीन चीज मिलती है। जो छोटे विचार के नीचे पुरुष हैं, वो तो कामना की पूर्ति के लिए ही तीर्थों में जाते हैं। हे गंगा माई, बेटा देना, पोता देना, ऐसा करते हैं। परंतु जो धर्म पालन करने के लिए गंगा जी जाते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। और आत्म कल्याण करने के लिए जाते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। तीर्थों में जाए तो दूसरे की चीज काम में नहीं लेनी चाहिए, किसी से सेवा नहीं करवानी चाहिए, अपने से हो सके तो सेवा करनी चाहिए। कोई अपंग हो, कोई साधु हो, महात्मा हो, मिल जाए तो उनकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। तीर्थों में ऐश आराम भोग ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहां भी जमीन मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, जो कुछ आ गया खा लिया, जल कहीं पी लिया, गरम ठंडा, ज्यादा विचार मत करो। जहां तक हो तीर्थों में मिठाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हजम कम होती है। सत्य व्रत से रहना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। अपना कोई साथी हो तो उसको मार्ग में छोड़कर जाना नहीं चाहिए, उसे साथ में रखना चाहिए। महाभारत की कथा है, युधिष्ठिर आदि तीर्थ यात्रा के लिए गए, कुत्ता साथ हो गया तो उन्होंने कुत्ते का भी त्याग नहीं किया। आप तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, आपका साथी बीमार हो गया तो उसको छोड़कर मत जाओ। बहुत से लोग वहीं छोड़ देते हैं। बद्रिकाश्रम जाते हैं तो भगवान उसे महान पापी समझकर उससे हट जाते हैं कि तू अपने साथ वाले का साथ नहीं दिया, फिर मेरा दर्शन करने आया, मेरे दर्शन का क्या लाभ। भगवान कहते हैं, साक्षात जो चेतन मूर्ति है तुम्हारे साथ चला, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया, उसको तू छोड़ आया बीच में और मेरे दर्शन करने आया है, बड़ा पाप है। भगवान के दर्शन होते भी होंगे तो उस आदमी को नहीं होंगे जो बीमार को छोड़कर आता है। श्रेष्ठ पुरुष है वो साथी का त्याग नहीं करते, जो त्याग करते हैं वो नीच गति को प्राप्त होते हैं। एकनाथ जी महाराज भगवान के बड़े भक्त हुए, कंधे पर कांवड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे। गंगोत्री से लाया हुआ जल, गंगोत्री से लाया हुआ जल रामेश्वर लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक गधा मिल गया, प्यासा था, उन्होंने उसको भगवान समझ के जल पिला दिया, कांवड़ का जल पिला दिया तो गधे में से भगवान शंकर प्रकट हो गए, उनका लाभ हो गया। यात्रा में जाओ तो भगवान का नाम जप तथा स्वरूप का ध्यान करो, बन सके ये विशेषता है। अब माताओं बहनों के लिए कुछ बात कही जाती है, जो आपके घर गृहस्थ में भी काम आने वाली है। हम देखते हैं कि पांच भाई इकट्ठे होकर रह सकते हैं, पर पांच माताएं एक जगह नहीं रह सकती, आपस में खटपट करती है। एक कमरे में 20-20, 25-25 पुरुष रह सकते हैं, किंतु एक कमरे में दो घर की स्त्रियां भी नहीं रह सकती हैं। हमारी तो माताओं बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये कलयुग का घोर समय, इसमें अपना सुधार करके ही जाओ, क्योंकि ये शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, न जाने कितने जन्मों के बाद मिला है और अब जाने कब मिलेगा। इसको व्यर्थ में ही मिट्टी में मत मिलाओ। जो स्त्रियां लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलती। नरकों में भी जगह नहीं मिलती, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नरक में नहीं जाएंगी, ये अर्थ नहीं है। जैसे किसी छोटे पात्र में खूब सी चीज डाल दी जाए, वो माती नहीं, फिर भी डाला तो उसी में ही जाए। जैसे छबड़ी के अंदर, कलकत्ते में छबड़ी के अंदर कबूतरों को पकड़ करके ले जाते हैं, मुर्गों को पकड़ करके ले जाते हैं, छबड़ी है, मुर्गा ही मुर्गा डाल देवे, ऊपर जाली डाल देवे, ये एक दिन खूब भरोड़ी हो, इतनी इतनी देखी कबूतरों से, कोई मुर्गों से, जिंदे मुर्गे बेचना है ना उनको, तो उनके ऊपर जाली रहती है, तो एक के ऊपर एक यूं ठूंस ठूंस के भरते हैं। ऐसे कुंभी पाक आदि जो नरक होते हैं, वो घड़े की तरह होते हैं और उसमें डालते रहते हैं, आवे उन प्राणियों को डालते रहते हैं, अंदर तपते रहे, वो प्राणी अंदर चीख मारते रहते हैं। तो नरक में भी जगह नहीं मिलती का अर्थ, नरक में भी आराम से नहीं रह पाओगे। जिस घर में झगड़ा होता है, उस घर में कलयुग प्रवेश कर गया, इसे घर से निकालकर बाहर फेंको। सब एक मत हो जाए तो कलयुग के बाप की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। जहां कलह है उसी को ही कलयुग बोलते हैं। जहां सुमति है वहां संपत्ति है, सतयुग है। जहां कलह होगी वहां उसका पति क्लेश आएगा, क्लेश नाम दुख का है। जैसे स्त्री और पुरुष से संतान होती है, ऐसे ही कलह से, कलह और क्लेश की संतान है काल। जब कलह होती है तो कोई कुएं में गिरकर मरता है, तो कोई विष खाकर मरता है, सारा घर नष्ट हो जाता है, इज्जत मर्यादा सब खत्म हो जाती है। इसलिए घर में कलह मत करो, शांति से समझकर काम लो। और ये सब भगवान को भूलने के परिणाम है, भगवान की भक्ति करो। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, उसके हृदय में काम क्रोध आते ही नहीं है। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उरमाही। भक्ति रूपी मणि बसती है, वहां पर ये कौन आएंगे। भक्त के हृदय में क्रोध क्यों नहीं होता, विचार करो। क्रोध होता है प्रतिकूल होने पर, अनुकूल में तो क्रोध होता नहीं। हमारे मन के विरुद्ध कौन करता है, इस पर विचार करो। मन के विरुद्ध कभी कोई मनुष्य नहीं करता है, भगवान करते हैं। भगवान जो करते हैं, वो हमारे तो मन के प्रतिकूल करते हैं, लेकिन भगवान अपने मन के अनुकूल करते हैं। उनकी आज्ञा से होता है। तुम्हारी परीक्षा के लिए भगवान करते हैं, भगवान की अनुकूलता में अपने अनुकूलता माननी चाहिए, फिर तो प्रतिकूल नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या कोई सेवक मालिक के विरुद्ध जाता है? भक्त का लक्षण ही यही है कि स्वामी के अनुकूल होना। स्वामी जिसको अनुकूल मानता है तो सेवक भी उसी को ही अनुकूल मानता है। माता बहनों से हमारी प्रार्थना है, सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं सभी, इसलिए सनातन धर्म कहता है कि सब में भगवान है। किसी पर क्रोध मत करो, जिस पर क्रोध करते हो अरे उसमें भगवान है। मनुस्मृति का एक श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। क्रोध नहीं करने से धर्म का पालन होता है। आप लोग सत्संग में जाते हो बड़ी अच्छी बात है, परंतु सत्संग में जाकर के भी घर में यदि लड़ाई झगड़ा करोगे तो दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे, ताना मारेंगे कि धूड़ तुम्हारी सत्संग में, धिकार तुम्हारे सत्संग को। तब बताओ, सत्संग को ऋषि मुनियों ने इतना आदर दिया है, अनादि काल से ये सत्संग चलता है, और जो अपने मुंह से ऐसा बोलता है कि धिकार तुम्हारी सत्संग को, उसको कितना पाप लगता है, और उसको पाप लगवाने में आप हेतु बनती हो। इसलिए किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। लड़ाई झगड़ा नहीं होने में खास बात है, अपने वाणी को खूब कंट्रोल में करो। किसी को कड़वा वचन मत कहो और किसी के दोष मत बताओ। इन दो बातों का विशेष ध्यान रखोगे तो कलह से बच जाओगे। प्रेम से बोलो, कोई आपके साथ कैसा भी कटुता का व्यवहार करता है तो आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए कि भगवान मेरी परीक्षा दिलवा रहे हैं इसके द्वारा। जैसे लड़का परीक्षा देता है तो उसका पेपर किसी और प्रेस में छप कर आता है, ऐसे ही हमारे सामने जो कड़वा वचन बोलने वाला है, चाहे वो हमसे बड़े हो चाहे छोटे हो, भगवान इनके द्वारा बुलाकर हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। इतनी बात मान जाओगी तो फिर आपका सत्संग करना, तीर्थ में जाना, सब कुछ सफल हो जाएगा। सत्संग आदि में जाने पर भी सुधार नहीं होता है, स्वभाव वो का वो ही रहता है, वही लड़ाई झगड़ा, वैसे ही बहुत बोलना, वैसे ही घर में अपने मन की करना, तब फिर बताओ कहां सुधार होगा। हम चेत नहीं करते हैं। आप लोग देखते हैं कि हम सत्संग कर लिया तो एक काम कर लिया, प्रभाव होना चाहिए ना। जैसे आप लोग आम का वृक्ष लगाते हो तो उसके फल की तरफ देखते हो, वहां तो देखने का हमारा इतना अधिकार नहीं है, पर सत्संग करते हो तो अपने व्यवहार रूप फल की तरफ ज्यादा नजर रखो। जब तक हम लोग अपना स्वभाव नहीं सुधारेंगे, हमारे अंदर अर्थ की तृष्णा रहेगी, लोभ रहेगा, क्रोध रहेगा और अपना अभिमान अहंकार रहेगा, तब तक नरक का दरवाजा हमारे लिए खुला है, देखना ही पड़ेगा। आत्मा का पतन करने वाली चीजें आपके पास हैं तो क्या फायदा। किसी आदमी के पास ध्यान देना है, बहुत बढ़िया बात है, 1 करोड़ रुपए की मणि है परंतु उसके पास 1 मण का पत्थर भी बांधा हुआ है शरीर पर, तो पानी में यदि डूबने लगेंगे तो वो मणि उसको बचाने में काम नहीं आएगी। 1 करोड़ रुपए की मणि है तो क्या हुआ, उसका पत्थर बंधा हुआ है वो तो पानी में डूबो ही देगा। इसी प्रकार से आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं होगा, काम क्रोध लोभ तृष्णा अहंकार ये वैसे के वैसे रहेंगे तो फिर दूसरी बातों से आपको क्या लाभ होगा। इसलिए भगवान की भक्ति करो। काकभुसुंड जी जहां रहते थे वहां 1 योजन तक माने 4 कोस तक काम क्रोध लोभ आदि दोष नहीं रहते थे। जो स्त्री अपने आप का सुधार नहीं कर सकती वो दूसरों का क्या सुधार करेगी, उसका जीवन व्यर्थ है। काम क्रोध और लोभ इनकी मां कौन है, आसक्ति। आसक्ति का नाश कैसे होता है, ईश्वर की भक्ति से। भक्ति का क्या स्वरूप है कि भगवान का नाम और स्वरूप का ध्यान, उठते बैठते चलते फिरते ध्यान रखें कि भगवान हमारे साथ है, वाणी से या श्वास से भगवान का नाम जपें। ईश्वर भक्ति की ऐसी महिमा है, विष भी पी लेंगे तो अमृत हो जाएगा, जैसे मीराबाई ने पिया, प्रहलाद जी ने पिया, पर ये जानबूझ करके करने की बातें नहीं है, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब मीराबाई और प्रहलाद जी ने पिया तो विष की तरफ ध्यान जाएगा, पर मीराबाई ने और प्रहलाद ने कैसी भक्ति की, लोग उधर नहीं जाएंगे। भगवान की वास्तविक भक्ति के बिना शांति नहीं मिलती। राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लव लेसन सपने उताके। इसलिए हमारे हृदय में भक्ति रूपी मणि धारण करनी चाहिए, जिससे काम क्रोध लोभ आदि सबका नाश हो सकता है। राम